आज है 26 मार्च दिन सोमवार। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। भारत में पत्रकारों पर जानलेवा हमले, मध्य प्रदेश में ट्रक और बिहार में स्कॉर्पियो से पत्रकारों को कुचला गया।
जो पत्रकार हैं वो जब ऑन ड्यूटी करते हैं उन पर जो हमला होता है तो हमलावर के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू होना चाहिए।
चरमपंथियों की आर्थिक मदद के आरोप में UPATS ने कई लोगों को धर दबोचा।
आपको जानकर खुशी होगी कि ATS के हर केस में आज तक कोर्ट में कन्विक्शन हुआ है, जो कुछ करते हैं एविडेंस के बेसिस पे करते हैं।
और सुनिए,
जब एक लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उनके घर में बोला जाता है कि तुम पूजा रूम में मत जाना, किचन में मत जाना। इनफैक्ट यहाँ तक बोला जाता है कि अगर तुम अचार की तरफ देखोगी भी तो अचार खराब हो जाएगा।
कार्यक्रम में शामिल होंगे आपके खत भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार मोहम्मद शाहिद से। मध्य प्रदेश के भिंड में आज एक पत्रकार संदीप शर्मा को ट्रक ने कुचल दिया। वहीं कल रात बिहार के भोजपुर जिले में दैनिक भास्कर अखबार के पत्रकार नवीन निश्चल और उनके साथी विजय सिंह की गाड़ी के साथ टक्कर में मौत हो गई थी। पीड़ित पक्षों ने इसे हत्या का मामला बताया है। ब्रिटेन में पूर्व रूसी जासूस पर नर्व एजेंट हमले के बाद कुछ ही घंटों के अंदर कई देशों द्वारा रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 राजनयिकों को अमरीका छोड़ने के लिए कहा है। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि 14 यूरोपियन संघ के देशों से रूसी कर्मचारी निष्कासित किए जा चुके हैं। यूक्रेन ने 13, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड ने 4-4 रूसी कर्मचारियों को देश छोड़ने के लिए कहा है। जर्मनी ने कहा है कि रूस ने साफ नहीं किया है कि सोवियत संघ के काल का नर्व एजेंट कैसे इस्तेमाल किया गया। रूस ने इस मामले में शामिल होने से इनकार किया है। साइबेरिया में एक शॉपिंग सेंटर में आग के कारण मारे गए 60 से अधिक लोगों की जांच के मामले में रूसी अधिकारियों ने गंभीर उल्लंघनों को पाया है। उनका कहना है कि मॉल में आपातकालीन दरवाजे अवरुद्ध थे और सुरक्षा कर्मियों ने अलार्म सिस्टम को बंद कर दिया था। जांचकर्ताओं ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। केमेरोवो शहर के सेंटर में लगी आग के कारण अभी पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन ऐसी संभावना है कि आग सिनेमा हॉल से शुरू हुई थी। मारे गए पीड़ितों में अधिकतम बच्चे थे। एक चश्मदीद अन्ना जारिच नेवा का कहना है, वीकेंड पर हमने फिल्म देखने का फैसला किया था, यह अच्छा नहीं रहा। आग के बाद हमें बाहर फेंका गया। चौथी मंजिल पर जहां सिनेमा हॉल था वहां पूरी तरह अंधेरा हो गया। सब कुछ धुएं और आग में था। लोग डर रहे थे और बच्चे चिल्ला रहे थे। ये थे एक चश्मदीद के शब्द और आप सुन रहे हैं BBC समाचार। दक्षिण चीन सागर में चीन के निर्माण कार्य पर नजर रखने के लिए जापान ने फिलीपींस को 3 निगरानी विमान दिए हैं। चीन के ऊपर आरोप है कि वो इस विवादित जल क्षेत्र में सैन्य बेस बना रहा है। फिलीपींस ने कहा है कि वो समुद्र पर विमान से गश्त करेगा। जापान ने फिलीपींस के साथ संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्र में चीन की बढ़ती शक्ति का विरोध करने के लिए ये विमान दिए हैं। जापान के उपरक्षा मंत्री तत्सुओ फुकुदा ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा होने के नाते हम समुद्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उदाहरण चाहते हैं और फिलीपींस के साथ निगरानी की सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं। अब फिलीपींस ये करने में सक्षम है, यह हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए लाभदायक है। ये थे जापान के उपरक्षा मंत्री तत्सुओ फुकुदा के शब्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐप के द्वारा व्यक्तिगत डाटा अमेरिका में एक तीसरे पक्ष को भेजने की रिपोर्टें आने के बाद इसकी आलोचना हो रही है। समीक्षकों का कहना है कि ये ऐप उपयोगकर्ता के SD कार्ड की सामग्री को पढ़ सकता है और उसे डिलीट भी कर सकता है। सत्तारूढ़ BJP ने तीसरे पक्ष को जानकारी भेजने की बात को खारिज किया है। पूर्वी गुटा में सीरियाई विद्रोही गुट जैश अल इस्लाम ने उन रूसी रिपोर्टों को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि उसके लड़ाके सुरक्षित निकलने के लिए अपने हथियार डालने को तैयार थे। इस समूह का पूर्वी गुटा के डूमा शहर पर अभी भी नियंत्रण है और 4 सालों से सरकारी सेनाओं ने इसकी घेराबंदी कर रखी है। रूसी जनरल स्टाफ के एक अधिकारी ने कहा था कि लड़ाके आत्मसमर्पण के लिए तैयार थे, लेकिन उसके राजनीतिक नेता मोहम्मद अलूश ने कहा है कि ये पूरी तरह झूठ है। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और शाम की सभा में आपके साथ मैं हूं संदीप सोनी।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
दिन भर की शुरुआत आज हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां भिंड जिले में रेत माफिया और पुलिस की कथित सांठगांठ उजागर करने वाले पत्रकार संदीप शर्मा को आज एक ट्रक ने कुचल दिया। संदीप शर्मा के परिवार ने इसे हत्या का मामला बताया है। पत्रकार के परिवार का आरोप है कि संदीप शर्मा की जान को खतरा था, जिसकी उन्होंने शिकायत भी की थी, लेकिन उन्हें पुलिस की सुरक्षा नहीं दी गई। भोपाल से शूर नियाजी की रिपोर्ट।
भिंड के 35 वर्षीय पत्रकार संदीप शर्मा प्रदेश के एक स्थानीय चैनल में काम करते थे। सुबह के वक्त वो बाइक से जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें पीछे से रौंद दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज से पता चलता है कि संदीप सड़क के किनारे बाइक से जा रहे थे, लेकिन ट्रक अचानक उनकी तरफ मुड़ गया और उन्हें दबाते हुए वापस सड़क पर चलने लगा। भिंड के CSP वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया,
आज सुबह 9:45 के करीब एक डंपर से पत्रकार संदीप शर्मा की दुर्घटना में मौत हो गई है। उसने अपना काम कर लिया है और CCTV फुटेज देखने के बाद हमने डंपर को भी पकड़ लिया है और पोस्टमार्टम करके पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
बताया जा रहा है कि संदीप ने एक साल पहले रेत माफिया और पुलिस के बीच चल रहे लेन देन के मामले को एक स्टिंग के जरिए सामने लाया था। स्टिंग में एक पुलिस अधिकारी को रेत माफिया से रिश्वत लेते दिखाया गया था। इसके बाद से उन्हें लगातार धमकी मिल रही थी। संदीप शर्मा के बड़े भाई कांता प्रसाद इसे हत्या मान रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्रकार के तौर पर उनके भाई ने कई चेहरों को बेनकाब किया और यही वजह है कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
ये सर पूरी पूरी हत्या की साजिश है, ये जानबूझ के एक्सीडेंट कराया गया है। पत्रकार का काम करते थे तो उनको जान से मिलाने की धमकियां भी दी जा रही थी, सुरक्षा भी मांगी गई थी प्रशासन से, तो इनको दो गाड़ी उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन दो दिन बाद उन गाड़ियों को हटा दिया गया। कुछ इस रेत माफियाओं के निशाने पे थे और रेत माफियाओं को गिरफ्तार करने में लगे हुए थे, इसी वजह से घटना को अंजाम दिया गया। और हम लोग इसमें न्यायिक जांच की मांग करते हैं, जुडिशियल जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से और जो भी दोषी हों उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं RTI एक्टिविस्ट अजय दुबे आरोप लगाते हैं कि यह पूरी तरह से राज्य द्वारा प्रायोजित हत्या है। उन्हें लगातार धमकी मिल रही थी, इसके बावजूद उन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई।
ये तो मध्य प्रदेश सरकार का एक तरह से स्टेट सपोर्टेड मर्डर है, राज्य ने ही मर्डर किया है, क्योंकि जो व्यक्ति रेत माफिया के मामले में इसकी लोकेशन करता है और पुलिस को सूचित करता है, उसके बावजूद भी यदि पुलिस उसके संरक्षण नहीं देती तो इसी तौर पर यह एक तरह से राज्य समर्थित अपराध है। और जिस तरह वीडियो फुटेज आए हैं कि ट्रक खुद पीछे उसको जाकर टक्कर मारता है और भाग जाता है, तो ये खुलेआम गुंडागर्दी है और मीडिया पर आक्रमण के मामले में वैसे भारत कुख्यात है, मध्य प्रदेश भारत में सबसे कुख्यात है। और जब कोई व्यक्ति सुरक्षा की मांग करता है पुलिस अधिकारियों के बारे में, तो उसको सुरक्षा न देकर अपराधियों को दिया जाए।
लेकिन दूर दराज के इलाकों में पत्रकारों को इस तरह से काम करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अवैध उत्खनन करने वालों को आमतौर पर प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। शुरहनिया जी, BBC न्यूज, भोपाल।
तो ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की। उधर बिहार में भी बीती रात स्कॉर्पियो से एक पत्रकार को कुचल दिया गया। हालांकि ये हत्या है या सड़क दुर्घटना, इसे लेकर स्थिति अब भी साफ नहीं है। बिहार के भोजपुर से सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
सोमवार को जब मैं मृत पत्रकार नवीन निश्चल के घर पहुंची तो घर के सारे पुरुष दाह संस्कार के लिए गए हुए थे। मृत पत्रकार नवीन की पत्नी को नींद का इंजेक्शन दिया गया था। उनके बगल में नवीन की 16 साल की बेटी निहारिका बैठी थी। नवीन के दो बच्चे हैं, जिनमें से निहारिका ने BBC से बातचीत में कहा,
कल फोन आ रहा था, एक्चुअली 5-10 फोन आया, पापा रिसीव नहीं किए, बट लास्ट में रिसीव करके बोले कि अरे यार हम मतलब गुस्से में मतलब ऐसे बोले कि हम आ रहे हैं, क्यों बार बार फोन कर रहे हो, तो बस वही गए और उसके बाद ये सब हो गया।
बता दें, बीती रविवार की रात दैनिक भास्कर के बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी प्रखंड के पत्रकार नवीन निश्चल की स्कॉर्पियो से कुचलकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। उनके साथ स्थानीय पत्रिकाओं में लिखने वाले 25 साल के विजय सिंह भी थे। गढ़हनी प्रखंड के बागमा गांव में दोनों का घर बेहद नजदीक है। अपने घर में अकेले कमाने वाले 25 साल के विजय के 3 बच्चे हैं। उनकी माँ प्रभावती देवी कहती हैं कि उनके जीने का सहारा छिन गया।
बबुआ के मरने पर प्रशासन से करी के सजा दिलावे हमने कही है मांग मा।
दोनों के ही घर वालों के मुताबिक गढ़नी बाजार में पान की दुकान पर हुए एक विवाद के चलते कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई। नवीन का परिवार किसी भी तरह के पूर्व विवाद से इनकार कर रहा है, लेकिन मृतक विजय और गांव वालों का कहना है कि खबरों के चलते पहले से ही पूर्व मुखिया के प्रति हरसू मियां से नवीन का विवाद था। स्थानीय निवासी भिखारी सिंह बताते हैं,
मतलब कि
पत्रकार का काम है कि ये इधर से उधर काम आपको बताता है, इसलिए
उससे ना कोई दो
इधर। इस मामले में SIT का गठन किया गया है। हर्षु मियां की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मामले में अन्य अभियुक्त अभी फरार हैं, जिसमें से हर्षु मियां का बेटा डब्लू भी शामिल है। SIT का नेतृत्व कर रहे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार ने स्पष्ट किया है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हत्या थी या महज दुर्घटना। उन्होंने BBC से कहा,
राज्य घटना के बाद एक जो मेन कल्प्रिट है, मेन अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी हुई है हर्षु मियां जी, और जो सेकंड है वो जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। SIT का गठन हुआ है, इसका नेतृत्व मैं खुद कर रहा हूँ। SIT हर बिंदु पे अनुसंधान कर रही है, जल्दी हम बाकी का रिजल्ट देंगे।
सर, क्या ये पता चल पाया कि हत्या है कि एक्सीडेंट है, क्योंकि दो तरह के वर्जन आ रहे हैं?
ये तो अनुसंधान की बात है, अभी अनुसंधान शुरू हुआ है।
मई 2016 में सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद जिले और ब्लॉक स्तर पर पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल जोर शोर से उठा था, लेकिन नवंबर 2016 में रोहतास के पत्रकार धर्मेंद्र सिंह, जनवरी 2017 में पत्रकार ब्रजकिशोर, अगस्त 2017 में पत्रकार राजेश कुमार सहित पत्रकारों पर हमले और हत्या की घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि बिहार में पत्रकारों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है और सरकार उसके प्रति गंभीर नहीं। भोजपुर जिले के गढ़हनी प्रखंड के बागबा गांव से सीटू तिवारी, BBC।
ये हत्या या दुर्घटना के मामले हैं, जो भी हैं, बिहार और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करते ही हैं। इससे पहले दिल्ली में कुछ ही दिन पहले पुलिस वालों ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया था, इनमें महिला प्रेस फोटोग्राफर भी शामिल थी। दिल्ली में आज पत्रकारों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जयशंकर गुप्ता का मानना है कि भारत में पत्रकारों की जान पर खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
सबसे बड़ी बात है कि ये जो पुलिस चार्ज हुआ, लाठी चार्ज हुआ, उसके लिए कोई मजिस्ट्रेट का ही परमिशन नहीं थी। बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्होंने लाठी चार्ज किया। इसके चार पांच दिन पहले लाजपत नगर में यहीं पे जो सीलिंग्स का विरोध कर रहे थे व्यापारी, उसकी फोटो उतारने वाले फोटोग्राफर को पीटा गया। कल सारे छायाकारों ने, पत्रकारों ने अपने कैमरे डाउन कर दिए, जमीन पर रख दिए, उसका विरोध किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। बिहार में अभी दो पत्रकारों को कार से कुचल के मार दिया गया। इसके पहले सिवान में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, भिंड में भी हमले हुए। लगातार इस तरह की घटनाएं जो है देश के विभिन्न हिस्सों से निकल के आ रही है। मतलब लग रहा है कि जैसे पत्रकारों का काम करना ही जोखिम का काम हो गया, जान पर खतरे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारी जब ऑन ड्यूटी होता है, पुलिस के लोग ऑन ड्यूटी होते हैं, उनपे कोई हमला होता है तो हमलावर पे गैर जमानती धारा के तहत गिरफ्तारी होती है उनकी। तो उसी तरह से जो पत्रकार हैं, जो छायाकार हैं, कैमरामैन हैं, वो जब ऑन ड्यूटी करते हैं, उनपे जब हमला होता है तो हमलावर के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू होना चाहिए, FIR होना चाहिए।
प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जयशंकर गुप्ता। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS का दावा है कि उसने 10 ऐसे भारतीयों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तानी चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा के इशारे पर काम कर रहे थे। इन गिरफ्तारियों के साथ उत्तर प्रदेश का गोरखपुर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। क्या है इसकी वजह और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए गोरखपुर में वरिष्ठ पत्रकार कुमार हर्ष से मैंने अब से कुछ देर पहले बात की।
ATS ने यहाँ पर लोकल पुलिस के संपर्क के साथ छापेमारी शुरू की थी। गोलघर जो हृदय स्थल है गोरखपुर का, वहां पर बलदेवा प्लाजा के नई मैंसन्स नाम के एक मोबाइल शॉप है, उस पर से ये छापेमारी की शुरुआत हुई। वहां पे बहुत सारे CCTV फुटेज, कैश, बहुत सारे अन्य डॉक्यूमेंट पुलिस ने बरामद किए। फिर इसी शहर में चार पांच और ठिकानों पे भी छापेमारी हुई, जो नसीम मैंसन्स के दो जो प्रोप्राइटर है, अरशद नईम और नसीम अहमद, ये दोनों भाई हैं, इनकी रेती रोड पे भी दुकान है, वहां पे भी छापेमारी हुई और कुल मिला के 6 लोग यहाँ से गिरफ्तार किए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि हवाला ऑपरेटर्स की मदद से ये टेरर फंडिंग में काम करते थे, और जो ये दोनों भाई हैं नसीम और अरशद, ये उन 4 लोगों में शामिल हैं जो सीधे पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे, और बाकी जो 4 थे वो इनके कारिंदे थे, जो जिनका काम बैंकों में खाते खुलवाना और वहां पर बताई गई रकम जमा कराना या ट्रांसफर कराना।
कुमार हर्ष, ये ऐसा UPATS का दावा है, ये बताइए कि ये जो दो भाइयों का जिक्र किया आपने जिन्हें UPATS ने इस मामले में गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, उनके परिवार में आपकी किसी से बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है?
जी, नसीम अहमद की पत्नी नाजरीन से मेरी बात हुई और नाजरीन ने इस पूरे मामले को बिजनेस राइवलरी के तहत किसी की साजिश बताया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया कि ये किसकी साजिश है, और उन्होंने इस बारे में कहा कि बिजनेस में जिस तरीके की प्रगति हो रही थी उससे कुछ लोग ईर्ष्या रखते थे और उन्होंने पुलिस के साथ साजिश करके उन्हें फंसाया है।
जो बता रहे हैं मैं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान और ये नेपाल ये सब गलत है, बिजनेस करते हैं सीधे घर आना, नहीं जाना होता है, नेचर इंसान नहीं बोलता है, अपना काम कर रहा है, अपना बिजनेस किया, देखा शॉप बंद की घर चलाया, मेरे देवर को और मेरे हस्बैंड को फंसाया गया है, ये चाल है कोई ऐसा भी क्या करना कि एकदम एक बार उठा के ले गए, कुछ अता पता है ही नहीं किसी को, ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खून कर दिया या क्या कर दिया।
ये थी नाजरीन नसीम जिनके पति नसीम अहमद को UPATS ने पकड़ा है। लगातार छापेमारी और खास तौर पर ऐसे लोगों के बारे में पूछताछ का सिलसिला यहाँ गोरखपुर में जारी है जिनका कहीं न कहीं हवाला ऑपरेशन से किसी तरह का ताल्लुक बताया जाता है।
ये थे गोरखपुर से वरिष्ठ पत्रकार कुमार हर्ष। वैसे टेरर फंडिंग यानी चरमपंथी या चरमपंथियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के इस कथित मामले में सच्चाई कितनी है और ATS के पास क्या सबूत हैं, जानने के लिए BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा ने UPATS के चीफ असीम कुमार अरुण से बात की।
पिछले साल कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे जो ISI के लिए जासूसी करते थे और आतंकवाद में भी कुछ अन्य लोग गिरफ्तार हुए थे जो इन्वॉल्व थे। उनको पैसा जिस जगह से पहुंचता था, जिस टेलीफोन नंबर से इंस्ट्रक्शंस आते थे, उस लीड पे हम लोग कुछ समय से काम कर रहे थे। और जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें जो पिछला वाला मनी सप्लाई रैकेट था पाकिस्तान से संचालित हो रहा था उसी का एक और अंश पकड़ा गया। इसमें चार लोग ऐसे हैं जिनको सीधे पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन मिलता था कि फेक KYC वाले अकाउंट्स खोलो, उसमें पैसे का ट्रांजेक्शन कराते थे। छह लोग ऐसे हैं जो कि सीधे पाकिस्तान संपर्क में नहीं थे और संभव है कि वो ऐसा समझते हो कि केवल वो लॉटरी फ्रॉड जैसे अपराध में लिप्त हैं, लेकिन कुल मिला के एक मनी सप्लाई का रैकेट है जिसको कि अपराध के लिए यूज किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसको आतंकवाद के लिए और जासूसी के लिए भी यूज किया जाता है।
असीम जी, आपने बताया चार लोग सीधे पाकिस्तान के संपर्क में थे, किस तरीके से ये लोग संपर्क में थे, सबूत किस तरीके के हैं साबित करने के लिए ये लोग संपर्क में थे?
टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स हैं, जब इनका लैपटॉप फोन वगैरह बरामद किया गया तो उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिले हैं जो इंक्रिमिनेटिंग है क्योंकि वो मनी सप्लाई के बारे में है। आगे इसमें हमारा काम ये है कि पैसा जहां पहुंच रहा था उन लोगों को हमें ट्रैक डाउन करना है।
क्या अभी तक की जांच में आप ये बात पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि जिन लोगों को ऐसा मिल रहा था वो आतंकवाद के लिए ही था, ऐसे सबूत आपके पास हैं?
ये बहुत वाजिब सवाल है और जो चार लोग इसमें मुख्य हैं उनको पाकिस्तान लाहौर में बेस्ड हैंडलर से सीधे इंस्ट्रक्शन मिल रहा था, ये एक मोटी बात है। इसके अलावा और भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस उनके डिजिटल मीडिया से हम लोग को मिली है। इन चार लोगों को स्पष्ट रूप से पता है कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जो छह लोग हैं उनके बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं। संभव है कि उनमें से कुछ लोग केवल इतना समझते हों कि ये लॉटरी फ्रॉड जैसे अपराध का पैसा आ रहा है और उसी को वो सर्कुलेट कर रहे हैं और उसके लिए 10% 15% उनको पैसा मिल रहा है। जितनी जिसके खिलाफ एविडेंस होगी उतना ही ATS चार्ज फ्रेम करेगी कोर्ट में और उसी के मुताबिक उनको सजा दिलवाने का प्रयास करेगी।
जिन चार लोगों की आप बात कर रहे हैं कि सीधे पाकिस्तान के संपर्क में थे और पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग इन्हें दिशा निर्देश दे रहे थे, क्या आप उनके नाम बताएंगे सर?
जी, इसमें रीवा से जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उमा प्रताप सिंह वो है, प्रतापगढ़ से एक संजय नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और गोरखपुर से दो भाई हैं अरशद एवं नईम। ये चार लोग अभी तक की वेशना से स्पष्ट हुआ है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, उनके इशारों पे यहाँ पे ये नेटवर्क चला रहे थे।
ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन चारों का आपने नाम लिया है, किस तरीके की आर्थिक पृष्ठभूमि है इनकी?
चारों की आर्थिक स्थिति हाल के कुछ दिनों में अच्छी हुई है। गोरखपुर में खासकर जो दो भाई हैं उनके बारे में अगर आप और भी देखेंगे मीडिया में रिपोर्टिंग हुई है, उन्होंने खासा पैसा कमाया है हाल के दिनों में। अब ये विवेचना का विषय है कि उसमें से कुछ हो सकता है किसी वाजिब माध्यम से और कुछ अपराध के माध्यम से हो।
कई बार ऐसा होता है कि आतंकवाद विरोधी दस्ते या चरमपंथी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जो जांच एजेंसियां हैं वो गिरफ्तारियां करती हैं, लेकिन अदालत में जाके वो लोग छूट जाते हैं और जो कार्य प्रणाली है खास करके ऐसी एजेंसियों की उन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
UPATS ने एक बहुत अच्छी कार्य संस्कृति अपने शुरू से फॉलो की है और 10 साल ATS को बने हुए हुए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि एटीएस के हर केस में आज तक कोर्ट में कन्विक्शन हुआ है। जो कुछ करते हैं एविडेंस के बेसिस पे करते हैं।
ये थे यूपी एटीएस के चीफ असीम कुमार अरुण। श्रोताओं, आप जानते हैं कि महिलाओं के मुद्दे और महिलाओं की राय जानने के लिए, उनकी कहानियों को टटोलने के लिए बीबीसी की एक खास टीम जिसका नाम बीबीसी शी है, भारत के कुछ शहरों का दौरा कर रही है। पटना के बाद आज ये टीम पहुंची आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। मैंने अब से कुछ देर पहले विशाखापट्टनम में मौजूद बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य से बात की और आज क्या कहानी निकल कर आई जानना चाहा।
सबसे पहले तो संदीप, विशाखापट्टनम पटना से कितना अलग है, जबकि विशाखापट्टनम में भी पटना है, ये मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और जैसा कि हमारे कई श्रोता जानते होंगे, आंध्र प्रदेश का एक समुद्री तट पर बसा शहर है जो कि अपने खूबसूरत तट के लिए तो मशहूर है ही। यहाँ बहुत सैलानी आते हैं, व्यापार का भी एक केंद्र है, नेवी का भी हेडक्वार्टर है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि बहुत सफाई है और सड़कें बड़ी सुंदर हैं, जो कि पटना में ये दोनों ही बातें हमें बहुत अखरी थी कि सड़कें टूटी थी और सफाई नदारद थी। पर मुद्दे पर आए तो हमारे पॉपअप में आज बहुत अच्छी एक बहस छिड़ी, बहुत सारी महिलाओं ने शिरकत की, करीब 75 महिलाएं थी और उन्होंने ऐसे मुद्दे पे बात की जिसपे अक्सर औरतें हिचकिचाती हैं। उन्होंने माहवारी के मुद्दे पे बात की और दो बातें कही। एक तो ये कहा कि माहवारी के मुद्दे पर बातचीत ही नहीं होती है, स्कूलों में इस पर चर्चा नहीं होती है, सेक्स एजुकेशन ना के बराबर है और उसको लेके बहुत शर्म जुड़ी हुई है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही, ये मैं उन्हीं के मुंह से आपको सुनवाना चाहती हूँ।
आज के जमाने में भी हम ऐसे सिचुएशन में हैं जब एक लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उनके घर में बोला जाता है कि तुम पूजा रूम में मत जाना, किचन में मत जाना। इनफैक्ट यहाँ तक बोला जाता है कि अगर तुम अचार की तरफ देखोगी भी तो अचार खराब हो जाएगा, और उन्हें एक अलग से रूम दिया जाता है। उन्हें बेड पे सोने का भी इजाजत दिया नहीं जाता है, उन्हें नीचे सोना पड़ता है।
बहुत हैरानी वाली बात थी कि लड़कियों ने खुल के इस मुद्दे को उठाया और ये भी कहा कि उनकी ही काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, यानी लड़कियों की ही नहीं बल्कि माँ बाप की काउंसलिंग की जरूरत है। उन्हें ये समझाए जाने की जरूरत है कि इस तरह का बर्ताव ना करें और ज्यादा खुल के अपनी बच्चियों से बात करें। दूसरी बात जो निकल के आई वो ये थी कि यहाँ पर क्योंकि शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा है, जबकि शिक्षा में देखिए अभी हमने बात की कि सेक्स एजुकेशन का फुट नहीं है, पर यहाँ पर औरतों को शिक्षा ना मिले ऐसा मुद्दा नहीं देखने को मिलता है, जो कि हमें जैसे बिहार में देखने को मिला था। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और बहुत ही कठिन कठिन विषय पढ़ रही हैं, बहुत ही तकनीकी विषय पढ़ रही हैं, जिनसे हमारी मुलाकात भी हुई, लेकिन इससे उनके करियर में आगे जाने को उनको मदद नहीं मिल रही। और उन्होंने हमें बताया कि ऐसा क्यों है।
यहाँ पे लड़कियों को पढ़ने का मौका तो मिलता है लेकिन, और वो पढ़ती भी है, ये नहीं कि नहीं पढ़ती है, वो पढ़ती है, 10th 12th डिग्री वगैरह करती है, लेकिन वो सिर्फ सीवी के लिए होता है। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि हमारी लड़की ने इतना ज़्यादा पढ़ा है तो उसको एक अच्छा लड़का मिलेगा और कम डावरी देना पड़े, तिलक कम देना पड़ेगा। अगर और ये एक बस एक जैसे कि हमें सैलरी की जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा, और यहाँ पर ऐसा है कि तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगी तुम उतना अच्छा हस्बैंड मिलेगा और उतना कम डावरी देना पड़ेगी। अपने बर्डन को कम करने के लिए होता है, ना कि उन लड़कियों को वो अपने काबिल बनाने के लिए होता है, ना कि उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए होता है। तो ये चीज रुकनी चाहिए।
यानी संदीप, एक बार फिर ये बात निकल के आ रही है कि कैसे लड़कियों को कुछ भी आगे करने के लिए जो कर रही है सरकार या उनके माँ बाप, जैसे कि शिक्षा का स्तर बढ़ा रही है, लेकिन फिर भी शादी जो एक सामाजिक सोच है, शादी के रूप में उनकी जिंदगी अभी भी कुछ मायनों में बहुत सीमित हो रही है।
दिव्या, लगे हाथ हमारे श्रोताओं को ये भी बताते चलिए कि पटना के बाद विशाखापट्टनम हो गया, अब बीबीसी शी कहाँ पहुँचने वाली है टीम?
हमारा सफर जारी रहेगा और अब हम तमिल भाषी इलाके में जाएंगे, तमिलनाडु, और वहाँ पर कोयम्बटूर शहर में हमारी मुलाकात होगी कुछ औरतों से और फिर जानेंगे कि वहाँ जाके उनकी जिंदगी कितनी बदलती है।
विशाखापट्टनम से बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य के बाद अब बारी है श्रोताओं की, आपके पत्रों की,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मेरा स्वीकार कीजिए सूर्यांशी पांडे।
सूर्यांशी पांडे मेरे साथ हैं और अपने साथ बहुत सारी ईमेल्स और चिट्ठियां लाई हैं। मैं देख रहा हूँ किसी ने स्कैन करके अपनी चिट्ठी भेजी है।
ये थोड़ा रंग बिरंगा भी लगा थोड़ी देर के लिए, मैं भी समझ नहीं पाई कि क्या है, पर आपने सही कहा, स्कैन है। और ये भेजा है नीलमणि ठाकुर जी ने, दोरमा से, बिहार से भेजा है इन्होंने। और ये लिखते हैं कि जैसा सोमवार सुबह आपने कहा कि जनाब वसतुल्ला साहब की चिट्ठी आपने दोबारा भूल से सुना दी।
ये गलती तो हमसे हुई थी, वो उनकी जो डायरी होती है पाकिस्तान डायरी, हमने गलती से दोबारा वो प्रसारित कर दी थी।
लेकिन वो उसे गलती मान ही नहीं रहे, वो ये कह रहे कि जनाब ये भूल कैसी, ये तो 100% और अच्छा हुआ कि दोबारा सुन लिया हमने।
दरअसल हमारे बहुत सारे श्रोता वो सतुल्ला खान साहब को बार बार सुनना चाहते हैं और उनकी कलम में ऐसी ताकत है, इतनी जबरदस्त वो डायरी भेजते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि बार बार उनको सुनूं।
बिल्कुल। और आगे ये लिखते हैं कि यदि संभव हो अपनी निगाहें बिहार लोक सेवा आयोग के कारनामों पर जरूर डालें।
अब इन्होंने ये तो कहा है कि लोक सेवा आयोग के कारनामों पर, लेकिन क्या कारनामे हैं वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे संवाददाता वहां से हमें कुछ रिपोर्ट भेजेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो है सिलसिला ईमेल का शुरू करना चाहूंगी राजेश जी, और मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है यहाँ पर, जो भी नाम है वो सिर्फ एक ही नाम जो है गूंज रहा है, एक तो रेहान फजल।
बिल्कुल, रेहान फजल, रेहान फजल और रेहान फजल विवेचना का जिक्र कर रहे होंगे हमारे श्रोता।
और फारूक इंजीनियर पर जो विवेचना की थी उसकी खूब तारीफ आई है, जितनी आ सकती
थी। क्या बात फारूक इंजीनियर साहब ने की रेहान साहब से, इतने मजाहिया तौर पे, इतने हंसोड़ हैं, मतलब उम्र दराज हैं काफी, भारतीय क्रिकेट के सितारे रहे और रेहान साहब ने उनको मैनचेस्टर में पकड़ लिया, समझिए बहुत अच्छी, मुझे भी पसंद आई। कौन कौन लिखते हैं
इस कड़ी में? सबसे पहला नाम है अर्जुन दान चारण जी का, जो कर्मावास बाड़मेर राजस्थान से लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि रेहान फजल जी के द्वारा जो विवेचना की गई फारूक इंजीनियर की वो बेहद दिल खुश करने वाली थी और मुझे काफी अच्छी लगी उनकी ये विवेचना। उसके बाद तौकीर अहमद दुबई से लिखते हैं कि मैं पिछले 10 साल से आपका श्रोता हूँ और मुझे विनीत खरे और मोहन शर्मा की आवाज बेहद पसंद है।
अरे वाह।
और उन्होंने भी कहा कि इस शुक्रवार को विवेचना सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिकेट के बारे में फारूक इंजीनियर के बारे में सुनने को मिला।
ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे कौन कौन से और श्रोता हैं जिन्हें विवेचना पसंद आई, तो अगर आप सिलसिलेवार तरीके से उनका नाम ले देंगी तो अच्छा रहेगा।
बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं फिर अगला नाम जो आता है वो इनका आता है, अभय आनंद जी का, ये डालमिया नगर जिला रोहतास बिहार से बोलते हैं, और इनका भी ये कहना है कि विवेचना जो फारूक इंजीनियर पर की गई वो बहुत ही अच्छी थी। 24 मार्च इन्होंने बकायदा डेट भी लिखी है। उसके बाद नाम आता है आशुतोष अवस्थी जी का, ये उन्नाव उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, और इन्होंने भी कहा कि फारूक इंजीनियर पर प्रस्तुति विवेचना बहुत ही अच्छी लगी। और प्रताप सिंह लिखते हैं कानपुर से, और इन्हें भी फारूक इंजीनियर जैसे क्रिकेटर पर दिलचस्प जानकारी जो बीबीसी से मिली वो बेहद पसंद आई।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और उन तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये विवेचना सुनी लेकिन अपनी कलम नहीं उठाई। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार से वो हमें ईमेल भेजेंगे या चिट्ठी लिखेंगे तो हम उनकी राय भी इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे।
और अब जो है यहाँ पर एक मुकेश कुमार वर्मा जी ने लिखा है, ये टेलर्स भीलखेड़ी सीहोर मध्य प्रदेश से लिखते हैं, वैसे ये जानना चाहते हैं कि बीबीसी हिंदी प्रसारण नई दिल्ली से किया जाता है या यूके से, प्रोग्राम कहाँ तैयार होते हैं, इन्होंने पूरी सूची।
हमारे हो सकता है बहुत सारे और श्रोताओं को भी ये जिज्ञासा हो कि बीबीसी कहाँ से प्रसारित होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हम दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर हमारा दफ्तर है हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग में, वहीं से हम पूरा प्रसारण करते हैं, वहीं सब पूरे कार्यक्रम तैयार होते हैं। पहले 2009 तक बीबीसी लंदन के बुश हाउस में हम लोग थे, मैं भी वहां पर था और वहां से हम लोग प्रसारण करते थे, इसलिए मैं श्रोताओं से गुजारिश करूंगा कभी आप दिल्ली आना हो तो हमसे मुलाकात जरूर कीजिएगा।
बिल्कुल। गुड्डू गौतम जो है ये मोतिहारी बिहार से लिखते हैं, इनका ये कहना है कि बहुत दिनों बाद बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम अपने वास्तविक रूप में प्रसारित किया गया।
अच्छा, इस शनिवार को जो प्रसारित हुआ।
हाँ, और इस तारीफ के दौरान वो संदीप सोनी जी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बेहतरीन प्रस्तुति की।
जी हाँ, इस बार जो विषय था उसके साथ न्याय हुआ, ऐसा बहुत सारे श्रोताओं को भी लगा, हमें भी लगा, और संदीप जी ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता उस कार्यक्रम में शामिल हो सके, तो ये हमारी कोशिश ही रहती है। कई बार हम बिल्कुल असफल हो जाते हैं लेकिन कई बार सफल भी होते हैं। इसके साथ ही समय समाप्त हो चुका है, तो अब मैं आपकी इजाजत हो तो श्रोताओं को पता बता दूं।
हाँ बिल्कुल, आप पता बता दीजिए राजेश जी, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए ताकि और खताएं, और ऐसे ही हम आपकी राय का सिलसिला जारी रखें।
तो पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुन लेते हैं मोहम्मद शाहिद से।
बीबीसी समाचार, मध्य प्रदेश के भिंड में आज एक पत्रकार संदीप शर्मा को ट्रक ने कुचल दिया। वहीं कल रात बिहार के भोजपुर जिले में दैनिक भास्कर अखबार के पत्रकार नवीन निश्चल और उनके साथी विजय सिंह की गाड़ी के साथ टक्कर में मौत हो गई थी। पीड़ित पक्षों ने इसे हत्या का मामला बताया है। ब्रिटेन में पूर्व रूसी जासूस पर नर्व एजेंट हमले के बाद कुछ ही घंटों के अंदर कई देशों द्वारा रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। तिलक राज भाटिया स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे और ब्रजेश मिश्रा फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचा रहे थे। अगला प्रसारण जानते हैं आप भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत में फिर होगी मुलाकात। तब तक bbchindi.com आपके साथ है। शुभ रात्रि।